ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वञ्चाकल्पसंज्ञस्य कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदवस्थाय नमो। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् पुत्रेति तन्मेतया सर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयम् तवैवास्मि तवैवास्मि न जुहामि त्वया विना इति तं भाम। किस्मत बृहद भागवतामृतम द्वितीय विभाग सप्तम अध्याय। वनलता सर्वः आत्मनि विष्णुं व्यञ्जयन्त इव पुष्पबलाढ्या प्रणतभारविटपा मधुधारा प्रेमरहिष्टतनवो बभ्रशूष्म। सनातन गोस्वामी जी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि परीक्षित महाराज गोपी भाव की चिंतन करते करते उसमें आविष्ट हो गए। वो तो ये कह रहे हैं कि ये गोपी भाव में सिद्ध हो गए हैं और आगे वो बतलाएंगे कि किस प्रकार से वक्ता सुखदेव गोस्वामी भी गोपी भाव में सिद्ध हो गए। तो यहाँ पर वो तन्मय होकर के वर्णन करते करते मानो खुद ही वो गोपी हैं इस रूप में वो कह रहे हैं उस श्लोक के श्रीमद्भागवत के श्लोक को। वन लता सर्व आत्मनि विष्णु व्यंग्यंत इव पुष्प फलाख्या प्रणत भार पिटपा मधुधारा प्रेम हृष्ट तनमु सुषमा। वृंदावन के तरुलता भी सर्वव्यापक कृष्ण को कोटि कोटि प्राणों के रूप में अपने अंतर में रखकर प्रेम की विवशता हेतु उसको व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं अपने भावों को। तरुलता कृष्ण के प्रति अपने भावों को व्यक्त करने में असमर्थ हो रहे हैं। जैसे आश्रित वेणु गो गीतम स्मरोदयम काश्चित परोक्षम कृष्ण काश्चित परोक्षम कृष्ण बड़े अंत धीरे धीरे नहीं ये वेणु गीत का कह रहे हैं काश्चित परोक्षम कृष्णश्च आश्रित वेणु गीतम स्मरोदयम काश्चित परोक्षम कृष्ण तद वर्णयतुम आरब्धा नाशकन स्मरवेगेन विक्षिप्त मनसो निपत। वर्णन करना चाहती हैं कृष्ण के वेणु गीत को गोपियां। घर में बैठी हैं कृष्ण गोचारण कर रहे हैं वनों वनों में, एक वन से वन दूसरे वन में बहुत दूर, किंतु भाव नेत्र से ये कृष्ण को वेणु बजाते हुए देख रही हैं और उनकी क्या दशा होती है उनको भी देख रही हैं। और उसी का परोक्ष कृष्ण वहाँ नहीं है तो भी वर्णन करना चाहती है अपने सखी को, किंतु स्मर बेगेन विक्षिप्त मनसो, उनका चित्त मुक्त हो गया, मोहित हो गया, विक्षिप्त हो गया और वो वर्णन नहीं कर सके। उसी प्रकार से महाराज परीक्षित भी वर्णन करना चाहते नहीं कर पाते। किस तरह से, जिस प्रकार से यहाँ पर ये वृक्ष वृंदावन के तरुलता भी प्रेम में विवश होकर मानो व्यक्त नहीं कर पाते, अर्थात पत्र पुष्प से भरे हुए नम्र शाखाओं में से लता और वृक्ष सकल प्रेम में पुलकित होकर प्रणाम करने के लिए अपनी लंबी लंबी भुजाओं शाखाओं रूप भुजाओं को लेकर अपने अपने पुष्पों को उनके चरणों में अर्पण कर और आंखों से प्रेम की धारा बह रही है, बोल नहीं सके, प्रेम में विवश होकर के बस नतमस्तक हो गए। ये उसका अनुवाद अब सनातन गोस्वामी जी बतला रहे हैं। वृंदावन की जब कृष्ण की मुरली की ध्वनि कैसी है, वेणु ध्वनि कैसी है, यदि कृष्ण गोचारण करते 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 वेणु ध्वनि करते हैं गायों को बुलाते हुए, उस समय में सूखे हुए वृक्षों में और लताओं में भी फूल निकल आते हैं, नई नई कोपलें और पत्तियां भी उग आती हैं, शिला द्रवित हो जाती है बंसी की ध्वनि से, नदी का प्रवाह रुक जाता है, साधारण जल प्रवाह स्थगित होने से यदि धारा रुक जाए तो वो ऊपर में उठ जाएगा, उच्च प्रदेशों को भी प्लावित करती हैं एवं तरंगों में कमल इत्यादि उपहार लेकर के श्री कृष्ण के चरणों में वो पुष्पांजलि प्रदान करती हैं। उसे देख करके ऐसा प्रतीत होता है जनों नदियां भी सचेतन होकर के कृष्ण के चरणों में प्रणय की भिक्षा मांग रही हैं और वो सचेतन हो गई नदियां भी, किंतु ब्रज देवियों के उत्कट अनुराग के प्राबल्य के लिए उन्हें देख करके अपने रस के अनुरूप में ये ऐसा प्रकाशित कर रहे हैं, हो रहा है कि नहीं रही वो तो बात अलग रहे, किंतु ये अपने उच्छ्वासों को ये प्रकाश कर रही हैं, कौन, गोपियां। किंतु मैं समझता हूं कि गोपियां सत्य संकल्प हैं, इसलिए उनका कोई भी संकल्प, कोई भी जो कि वो सोचती हैं, विचार करती हैं, कोई भी झूठा नहीं होगा, इसलिए जरूर ऐसा होता होगा। सरुलता कौन है, जतकिन चित्रिण गुल्म कीकट मुखम गोष्ठे समस्तम ही तत् सर्वानंद मुकुंद दैतम, कृष्ण के बड़े प्यारे हैं और सचिदानंद स्वरूप हैं, वो सचेतन हैं, अचेतन नहीं है, उनका कृष्ण के प्रति भाव नहीं है, क्या भाव है, या तो सख्य या बात्सल्य या मधुर भाव, सखी भाव है। शांत तो वृंदावन में प्रकाशित नहीं, आच्छादित रहता है और दास्य भी शुद्ध दास्य नहीं, सख्य या बात्सल्य मिश्रित दास्य वहां पर होगा, इसलिए यहां पर कह रहे हैं मेघ इत्यादि से भी ये वृक्ष और लता हैं अधिक सचेतन है। मेघ आकाश में ऊपर में रहेगा कुछ संचरित होता है, पानी की बूंदे भी कुछ उससे गिरती है, कृष्ण के ऊपर छत्र छाया कर देता है, किंतु कृष्ण से उनका स्पर्श नहीं होता, स्पर्श नहीं होता, न उनके चरणों से, न उनके सिर से, न किसी अंग से नहीं होता, किंतु वृक्ष और लताओं का, इनका परम सौभाग्य है, ये कृष्ण की अत्यंत निकट से स्पर्श करते हैं, अपने प्रत्येक अंगों से, अपने पैरों से उनके ऊपर में चढ़ते हैं, अपने हाथों से उनके पुष्प इत्यादि का चयन करते हैं, अपने बस्तक्षल से उनका आलिंगन करते हैं, कदम्ब वृक्ष इत्यादि का आलिंगन करते हैं, कदम्बों को श्रीमती राधिका जी स्वयं समझते हैं, वो उनके फलों फूलों और नई नई कोपलों से वो अपना श्रृंगार भी करते हैं, उनका आस्वादन करते हैं, इस तरह से इनका अधिक सौभाग्य है। इसलिए कोई सखी कह रही है दूसरी सखी से, अरे सखी री, अरे ये मेघों की तो बात क्या, उनको तो बात ही अलग रहे, देखो तो ये कैसे कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, तथा दिवा भागे दिन में ये गोपियां बिरह सागर में निमग्न हो जाती है, यह क्यों कहा, दिन भाग में केवल बिरह में निमग्न होती है, इसका भी गुरु कोई रहस्य होगा, ऐसे दुख सागर में निमग्न हो जाती हैं कि उस बिरह सागर से उत्तीर्ण होने के लिए, पार करने के लिए कृष्ण के बिरह सूचक वन में विहार सूचक गानों को अवलंबन करती हैं, अर्थात वो गाने लगते हैं, उनका वर्णन करती हैं, उनकी कथाओं को बोलती हैं, परस्पर परस्पर किस कृष्ण किस प्रकार से विहार कर रहे हैं, कैसे गोचारण कर रहे हैं, कैसे सखाओं के साथ में क्रीड़ा कर रहे हैं, इस तरह से वो वर्णन करके बिरह सागर से मानो निकलना चाहती हैं, इसलिए उसमें करती हैं। बिरह माने क्या, विशेष रूप से रह, रह माने निर्जन इत्यादि में मिलन को विरह करते हैं, ऊपर से मिलने में भीतर को खो देते हैं, भीतरी भावों को खो देते हैं, और भीतर में मिलने से ऊपर का कुछ खो जाता है, कौन दोनों में श्रेष्ठ है, विशेष रूप से जो मिलन है वो विरह अवस्था में संभव हो सकता है, तो भी गोपियां इसे संतुष्ट, ब्रजवासी लोग संतुष्ट नहीं रहेंगे, चाहते हैं मिलना बाहर से, किंतु भीतर का खोना नहीं चाहते, इसलिए कभी कभी मिलन में ही विरह हो जाता है, विशेष रूप से ऐसे उसमें चले जाते हैं भीतर में कि बाहर का सब कुछ खो देते हैं। ये गोपियां तीरथ समुद्र से पार करने के लिए कृष्ण की, कृष्ण के गमन गमन भंगी, उनका परस्पर प्रेम पूर्वक आलाप, उनका प्रेम पूर्वक बातचीत आलाप, बंकी की आंखों से उनकी तरफ में देखना इत्यादि का स्मरण करके और भी बिरह सागर से पार करना चाहती हैं और डूब जाती हैं, जितना चेष्टा करती हैं मानो दलदल में वो धंस जाती हैं, अपने को तुच्छ समझकर और कृष्ण से थोड़ा सा संबंध वाली वस्तु को वो धन्य और कृतार्थ मानते हैं, और वैसा ही भाव अपने में लाने के लिए प्रार्थना करते हैं भगवान से। गोपियां ऐसा ही यहां पर कर रही हैं, वन लता और तरुओं को देख करके उनका महात्मा वर्णन कर रही हैं प्रेम में पक करके। बल लता सर्व आत्मनि विष्णु, पहले के श्लोक में यह बतलाया गया है नद सदा तुपधार्य मुकुंद गीत हंसराय अद्री अबला हरिदास बरजा। इसमें बतलाया गया है गिरिराज गोवर्धन के तट पर उसके सानु प्रदेश में कृष्ण विहार कर रहे हैं, गायें पासी में चल रही हैं, कृष्ण उनका आह्वान कर रहे हैं और बेनिराज के आकर्षण उसको सुन करके वृंदावन के लता इत्यादि भी अत्यंत आकर्षित हो जाते हैं, गायों को बुलाते हैं, आवाहन करते हैं, काली धवली श्यामली पिशंगी यमुने इत्यादि रूप में उनका आवाहन करते हैं। उस समय गायें और बछड़ों का तो वो आगे शायद बतला गए हैं या बतलाएंगे, किंतु तरुलताओं की जिनको पुकार नहीं रहे बुला रहे हैं गायों की, और उसको सुनकर के ये वृक्ष लताओं का कैसा भाव हो जाता है इसका ये वर्णन कर रही है। आप उनको सुनकर के वेणुध्वनि को आंखों से आंसू की वर्षा होने लगती है, मधुधारा निकलती है, विशेष करके आम्र कदम्ब नीम इत्यादि वृक्षों से रस की धारा निकलती है। यदि सवेरे या शाम को मधुमास माने चैत्र मास में जाओ तो ऊपर से कुछ वर्षा जैसे होती है छोटी छोटी फुहार, ऊपर से फुहार जैसा वो गिरते हैं और उसके पत्तों पर मधु इतना जम जाता है कि बच्चे लोग सब चाहते हैं बड़े प्रेम के साथ। यहाँ पर स्म संस्कृत में विस्मय के भाव को व्यक्त करने के लिए प्रयोग हुआ है। यहाँ पर बड़े विस्मय के साथ में ये बतलाएं, देखो तो पेड़ों की क्या दशा है कृष्ण की बंसी ध्वनि सुन करके, हमारी ऐसी दशा नहीं होती, हमारी दशा ऐसी नहीं है, इसलिए बतला रही है पेड़ों की कैसी स्थिति हो जाती है। नरोत्तम ठाकुर जी ने कहा है क्या वो पशुपाची झूरे पाषाण बिदरे सुनी जार गुण गाथा, तात्पर्य किंतु कभी नहीं पशु पक्षी भी जिनकी गाथा को सुनकर के प्रेम की लीला और उदारता को सुनकर के गल जाते हैं, पत्थर की शिलाएं भी गल जाती हैं और हम लोगों का चित्त इतना दिन सुनकर के भी कुछ गलता नहीं। गोपियां भी ऐसे अपने को दुर्कार कर रही हैं। हम लोगों को भी ये विचार करनी चाहिए क्या कारण है कि हमारा हृदय द्रवित नहीं होता, निर्मल नहीं होता, भगवान की कथाओं को रोज रोज सुनते हैं, गोपियों का चरित्र नहीं होता। और इन पशु पक्षियों को देखो, हम लोग अभी हॉलैंड गए थे, वहां पर बतलाया था ना कैसे हम लोग हरे कृष्ण कर रहे और सैकड़ों गायें कान खड़ी करके बड़ी दूर दूर से दौड़ती हुई हम लोगों के तरफ में आ करके और एकदम खड़ी हो गई, बड़ी बड़ी गायें जो कि 50 किलो 60 किलो दूध देती हैं और एकदम खड़ी हो जाती, उनके बछड़े सुन करके धीरे धीरे आने लगते हैं। और हम लोग रोज करते हैं रोज सुनते हैं किंतु चित्त द्रवित नहीं होता, पुलकित नहीं होता, यहाँ तक कि वैष्णव संघ से इतनी विरक्ति हो जाती है कि ऐसे वैष्णव संघ को भी छोड़ करके हरि कथा छोड़ करके न जाने निर्जन में हम कहाँ चले जाते हैं और न जाने क्या करते हैं भाई, ऐसा कठोर। विष्णु माने व्यापक, सर्वत्र वर्तमान होने पर भी भक्त वश्यता हेतु नंद की स्वरूप में सर्वदा स्थित है, सबके हृदय में है कृष्ण। मानव कृष्ण को विष्णु व्यंजन करने के लिए, व्यक्त करने के लिए, ये विष्णु है, व्याप्नोति इति विष्णु, सर्वत्र है, किंतु भक्त वात्सल्य के कारण हमारे सामने खड़े हैं। इस चीज को मानव व्यक्त करने के लिए सदा स्थित परम विष्णु को निधिर न्याय यत्न पूर्वक, ऐसे कृष्ण को, कृष्ण को अपने हृदय में रखते हुए भी प्रेम विवशता हुई हो, प्रेम विवश होकर के उनको व्यक्त कर रही है। कैसे व्यक्त कर रही है? कृष्ण को देखते ही उनकी बंसी ध्वनि सुनते ही उनके डाले जो ऊपर थी धीरे 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 सखाओं के साथ में नीचे उतर आए। मौसम नहीं है ठीक फूल का और फल का, किंतु कहां से फल और फूल मंजरी एकदम उसमें भर गई। ये क्या चीज है? ये हृदय, हृदय का भाव उनके अंदर में प्रकाशित हुआ। यहां पर तीन पदों के द्वारा व्यंजयंत इव पुष्प फलाढ्या प्रणतभार विटपा मधुधारा प्रेम हृष्ट तनमो सूक्ष्म, इन तीन पदों में उसका लक्षण दे रहे हैं। जब पेड़ों की और लताओं की कैसी स्थिति हो जाती है, पुष्प फलाढ्या, पुष्प फलाढ्या, साधारण रूप में तो पुष्प और फल तो है ही है, फलों के द्वारा और भी गंभीर सब अर्थ यहां पर प्रकाशित करेंगे। लताएं मानव प्रेयसी हैं कृष्ण की, वो पुष्प और फल आदि से भर जाती हैं बाहर में, किंतु ये बाहर का नहीं है, ये भीतर का ही है, ये अनुभव है। अनुभव बहुत प्रकार के होते हैं, जिसमें अर्थसात सात्विक इत्यादि ये सब भाव हैं। इसके अतिरिक्त हाव भाव हेला और भी बहुत सारी चीजें, ये माने उसके द्वारा वंचित हो रहे हैं। यदि टेढ़ी डाल करते हैं तो क्या समझना चाहिए, माने हाव के रूप में देख रहे हैं कृष्ण के प्रति एक तरफ निहार। फूल फल उनके हृदय के अपने अनुभव हैं, यदि उनकी आत्मा में ये भाव होंगे तो शरीर के बाह्य रूप में अनुभव दिखते हैं। अनुभव माने पीछे जैसा उसका अंतर का भाव होगा उसी के अनुरूप बाहर में लक्षण प्रकाशित होने पर वह अनुभव कहलाता है। भीतर में भाव नहीं है और ऊपर में हो जाएगा, ऐसा नहीं, भीतर के भाव के अनुरूप में ऊपर के लक्षण ये सब होते हैं। उसके भक्त स्वामी सिंधी त्याग में सब लक्षण दिया गया है, उसमें एक लीला भी है, अनुभव है। लीला मैंने वो इतना अधिक सदात्म हो जाता है साधक, साधक का मतलब बल्कि राग जो जिनके हृदय में है, रागमयी भक्ति वाली जो गोपियां रागात्मिका हैं उनको ये सब भाव उत्पन्न होते हैं। देखते हैं लीला मैंने कृष्ण का स्मरण करते 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 तादात्म हो करके कृष्ण को अपने को समझते कि मैं ये कृष्ण और कृष्ण बन करके दूसरी गोपियों को उसके अनुरूप मानकर और उनसे वैसा ही व्यवहार करती हैं जैसे किसी को एक ने पूतना के रूप में देखा और अपने आप उसके बस्तक्षल पर चढ़कर और उसका स्तन धारण किया और चूसने लगी उसके प्राणों को। और दूसरी कहती है जिसको पकड़ी है जैसे छोड़ो रे छोड़ो रे। अब जो कृष्ण अपने को कृष्ण में तादात्म्य है वो तो गोपियां हैं, आज जिसको पूतना जो बनाया है वो जो गोपियां नहीं है क्योंकि उनका तादात्म्य नहीं है, वो योग माया के द्वारा प्रकटित हैं केवल। इस चीज को हमारे रूप सनातन गोस्वामी और ये सब लोग नहीं प्रकट करते, तो हम लोग तो यही जानते थे कि एक कोई गोपी हो गई
और एक पूतना बन गया,
कृष्ण हो गए और एक पूतना, किंतु ये समझ में नहीं आता है जो जो पूतना हुई उसका ये भाव कृष्ण में तो तादात्म्य नहीं है, तो पूतना में तादात्म्य है। आ रहा है समझ में? ये कृष्ण में तादात्म्य नहीं है, इसका तादात्म्य है पूतना में, तो गोपियों का पूतना में क्यों तादात्म्य होगा? ये तो भक्ति विरुद्ध है। कृष्ण के निज जन होना चाहिए ना, उसमें तादात्म्य होती। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने अनुग्रह करके हम लोगों जैसे लोगों के संदेह को दूर करने के लिए ये बताए, नहीं ये जो गोपियां जो बनी थी ये योग माया के द्वारा क्या प्रकटित थी, वो भी लीला है, किंतु यह स्थाई नहीं रहता। यह क्या है? संचारी भाव जैसा, संचरण करके अपने मूल पानी में मिल जाना और फिर दूसरी फिर उसमें से निकला फिर उसमें मिल जाना, ऐसे भाव संचारी कहलाते हैं। मुख्य मूल भाव स्थाई भाव के वो संचरित तो होते हैं और फिर उसमें मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं और फिर नए नए तरंग सब उठते हैं। ये भी लीला है, लीला अनुभव स्थाई नहीं होता। नहीं, इसीलिए यहाँ पर कुछ मायावादी और द्वैतवादी गोपियों को इसी रूप में ग्रहण करते हैं, यही अंतिम साधना है। इसलिए वो कृष्ण में मिल करके एक हो जाना चाहते हैं, किंतु वो उस चीज को जानते नहीं है, रूप गोस्वामी के भावों को पढ़ा नहीं, हृदयंगम नहीं करते, इसलिए इस चीज को समझ नहीं। यह बात तो केवल गोपियों के लिए संभव है लीला अनुभव, दूसरों के लिए नहीं। यहां तक कि सत्यभामा को भी ये संभव पर नहीं है, रुक्मिणी इत्यादि के लिए भी संभव नहीं है और दूसरों के लिए नहीं। जसोदा जी का भी लीला अनुकरण ऐसा नहीं होगा, कृष्ण बन जाना और दूसरे रूप में हो सकता है। इसलिए ये गोपियां यहां पर बोल रही हैं, ये फल फूल मत समझो, गोपियों का अनुराग है जो फल और पुष्प के रूप में बाहर के रूप में निकला हुआ दिख पड़ता है, असल में ये अनुराग है उनका। ये वृक्षों का परम सौभाग्य है, लताओं का परम सौभाग्य है कि ये फलों को उन्होंने धारण किया है, जैसे जैसे बेल वन में बेल है, कैंत होता है ना, कैंत के फल होते हैं, कमरंगा एक फल होता है, उसके 6-7 षटकोण जैसे और ठीक उसका रंग वैसा ही होता है, मानो श्रीमती राधिका के एक एक भावों की व्यंजना करने के लिए ये सब फल होते हैं। लताओं के जो सखियां हैं, कृष्ण की प्रेयसियां हैं, इनके हृदय के भावों को व्यक्त करने के लिए मानो ऐसे भावों को व्यक्त ये कर रही है, असल में है ये अनुराग। परम सौभाग्यवान है जो ऐसे फलों को और ऐसे फूलों को ये धारण करती हैं। यहां पर इनके द्वारा यही व्यक्त कर रहे हैं, अक्षय संपत्ति है जिसके द्वारा कृष्ण की कैसे कैसे सख भाव से बात्सल्य भाव से और मधुर भाव से ये सेवा कर रहे हैं और कर रही हैं। कृष्ण को मानव प्रणाम कर रहे हैं। ये अब देख लेना, वो सब नहीं बतला।
आपने अभी बताया
ना, अभी कोई कोई सखा भी हैं, कोई कोई सखी भी हैं, लताएं सखियां हैं। सखियां में भी बहुत प्रकार की सखियां, उनमें से अपने को जिस प्रकार से वो गोपियां अपने भाव कोश में आरोपित कर रही हैं, वो ठीक अपनी जैसी, जो जो गोपी जैसी है वैसे ही उसको समझ रही है, अपने भावों को ये व्यक्त कर रही है। कोई पुरुष रूप में के भाव को, जैसे कि वृक्ष इत्यादि हैं, सखा के रूप में कृष्ण को फल दे रहे हैं, कोई सखी के रूप में फल दे रही हैं, जैसे जिनके भाव हैं उसी रूप में उसको ग्रहण कर रही हैं। ये इनकी अक्षय इनका फल है। प्रणाम करने के लिए अपने सखाओं को उन्होंने नमित कर दिया। यद्यपि दाक्षरस जैसा मालूम पड़ता है किंतु दाक्षर नहीं, यह दाक्षिण्य भाव वाली गोपियां जैसे कृष्ण के चरणों में झुक जाती हैं, उनके चरणों को अपने गोदी में ले लेती हैं, उनका सम्मान करती हैं, कभी अपने स्कंधों में रखती हैं, मानो इस तरह से। अर्थात विनय लक्षण, विनय माने दाक्षिण्य भाव, प्रणाम के द्वारा रूप और भाव संपत्ति को ये मानव प्रकाश कर रहे हैं। हृदय द्रवीभूत हो जाने के कारण फूल और सूक्ष्म शरीर द्वय संबंधी हर्ष विकार रूप परम भक्ति संपद युक्त है। अर्थात गुण और भाव हृदय द्रवित होने पर फूल और सूक्ष्म शरीर संबंधी हर्ष इत्यादि को, आनंद इत्यादि को, अर्थात परमा भक्ति को धारण करके दुर्लभ संपत्ति को उन्होंने प्राप्त किया है। इसलिए मधुर धारा हो गया समय, मधुर धारा का वर्षण करती हैं, कृष्ण गोचारण करके लौट रहे हैं। अटत जद भवान अन्हिकाननम त्रुटि जुगायते स्वाम अपश्यत कुटिल कुंतलम श्री मुखंचते जड़ उदीक्षताम पक्ष कृत दिशा। इसके बाद के श्लोकों में भी है, कृष्ण जब लौट रहे हैं तो गोपियां देखती हैं, जो जादुकुल की स्त्रियां कंस के रंगस्थल में जो भावों को व्यक्त कर रही हैं, उसका तीसरा श्लोक या चौथा श्लोक। जब कृष्ण वन से लौट रहे हैं, गोपियां प्रतीक्षा करती हैं कृष्ण। हाँ, प्रातः प्रजात प्रजत अभिशतश्च सायं गोभी समम कण्यतो अस्य निशम्य वेणुम निर्गम्य तूर्णम अवलापुति भूर कन्या सस्मो मुखम। अच्छा ठीक, गोपियां वहीं पर प्रतीक्षा करें कृष्ण को आते और जाते समय बनते हैं। निर्गम्य तूर्णम पति भूर पुण्य, परम पुण्य से, परम पुण्य मैंने क्या, परम प्रेम से वो देखती हैं और देखते ही आंखों में आंसू छलक आते हैं। कृष्ण का रूप निहार नहीं सकती और अपने को देख देते हैं, दोष देती हैं, ब्रह्मा का दोष। एक तो आंखों में पलकें, और यदि पलके भी ना रहे तो देखने में आंसू छलक करके आ जाते हैं, देख नहीं पाते। ये आंसू क्यों आते हैं? इसलिए अपने भावों को यहां पर लताओं में और वृक्षों में आरोप कर देते हैं अपने भावों को। इनका न जाने भाव क्या है, वृक्षों का न जाने भाव क्या होगा, वृक्ष वहां तक नहीं समझते। यदि सिद्ध परिकर भी हो तो उनमें यह भाव होना, महाभाव होना बड़ा कठिन है। उनमें प्रेम नित्य सिद्ध होने पर भी गोपियों जैसा ऐसा भाव होना बहुत असंभव है, किंतु वो अपने मनोभाव को उनके प्रति, ये आंखों में आंसू छा जाते हैं, बार बार पोछती हैं, देखने की चेष्टा करती हैं और फिर आंसू आ जाते हैं। महाप्रभु जबकि नृत्य कर रहे हैं रथ यात्रा में, कहते हैं कि आसपास के लोग भीग गए। जब वो नृत्य करते हैं और उसमें पानी जो निकलता है तो वो चारों तरफ में गिरने लगता है और आसपास के लोग तितिलो माने भीग गए। ये कैसे संभव, हम लोग नहीं अनुमान कर सकते हैं। उस समय जिन लोगों ने देखा उनमें भी सिद्ध महात्माओं ने जो देखा वो लोग इसका अनुमान कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इन्हीं भावों को जो गोपियां व्यक्त कर रही हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं, किंतु कोई भी स्थायी प्रभाव नहीं। किसी को अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं भी लगेगा। इन भावों को स्पर्श करना भावावस्था में आए हुए लोगों के लिए संभव है, इनको समझ करके हृदय में कुछ उद्दीपना हो। साधारण लोगों के लिए उद्दीपना होना कठिन। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि हम लोगों का कभी कभी ऐसा सौभाग्य हो तो इन चीजों को हम लोग अनुभव कर सके। असल में यही सर्वसाध्य शिरोमणि भाव है, साधन का उद्देश्य भी यही है। इनको सुन करके भी यदि हमको लोभ उत्पन्न नहीं होता है गोपियों के भाव के प्रति, तब तो हम लोग एक जड़ पत्थर की भांति हैं। कितने तरह के भाव होंगे इसका, एक दो तरह का नहीं, और वर्णन करना संभव भी नहीं। अहो अरे लताओं तो लताएं हैं, लताएं कैसे खड़ी हैं, खड़ी नहीं हो पा रही, प्रेम के मारे झुक गई और झुकने से भी वो गिर जाती। उनके पतियों ने अलंबन देना चाहा, पति कौन है, वो जब खड़े हैं और गोपियां जब से झुक गईं और अपने को संभाल नहीं पाई तो अवलंबन करने के लिए चारों तरफ से उनको लपेट पेड़ों को, जिससे वो खड़ी हुई और उन लोगों ने भी वैसे ही अवलंबन लिया। वो अपने पतियों के सहित, हाँ लताचरणों के सहित, वहां द्रपति पादप चरित उनके संपर्क से, किनके, उन लताओं के संपर्क से, लताओं का ऐसा भाव देखा उनके पतियों ने और देख करके वो भी प्रेम में विवश हुए। जैसे दिव्या विमान गतय स्मरणन स्वारा भस्त पशुन कबरा मुहोर गई, पति उनके साथ में है राष्ट्रीय स्थल में वायु विमान पर और स्त्रियां मुग्ध होकर के गिर पड़ी और उनके पति उनको संभालने में लगे, उनको कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कृष्ण की इस लीला को भी नहीं देखा, न बंसी ध्वनि श्रवण किया, उनके स्पर्श से यदि कुछ हुआ हो, ऐसे ही इनके पति भी आज, उनके पति भी उनके भावों में एकदम संक्रामित हो गए और वो लोग भी बड़े प्रसन्न होकर के उनमें कदंब इत्यादि के फूल से भर गए, आमों में मंजरियां आ गई और भी बहुत से पेड़ हैं बड़े बड़े जिसमें लाल और सुंदर सुंदर सब फल फूल निकलते हैं, वो प्रेम में एकदम भर करके मन मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। लताओं का यहां पर प्राधान्य समझना चाहिए, वृंदावन में इन्हीं लोगों का प्राधान्य, गोपियों का प्राधान्य है, नदियों का प्राधान्य है, गायों का प्राधान्य, वृक्ष इत्यादि का उतना वर्णन नहीं किया, षणों का, बैलों का, पुरुष जाति का वर्णन नहीं किया कृष्ण के विशेष इस लीला में। इसलिए लताओं के प्राधान्य हेतु प्रथमतः लताओं का परिचय दिया गया, वन लता सर्व, इसके बाद में तरु का दिया गया, ऐसा समझना चाहिए। ये प्राधान्य किस लिए, प्रेम के प्राधान्य से, गोपियों का भी गोपों से प्राधान्य अधिक है, नंद बाबा से प्राधान्य यशोदा मैया का है, सखावन से भी सखियों का अधिक प्रधान। इस तरह से यहाँ पर भी समझना चाहिए। इसीलिए यह प्राधान्य केवल इसी के लिए नहीं बल्कि प्रेम की वजह से उनके अंदर में प्रेम अधिकता, प्रेम की अधिकता। क्यों? उनमें स्वाभाविक ही ऐसे भाव हैं। कहीं नहीं, नया भाव नहीं लाना, ये साधन के समय से ही है। रागानुगा भक्ति का अवलंबन करके जो जिस रूप में साधन किया उसके अनुसार में साधने करीबे जहां सिद्धि ते पाई गई, सिद्धि में वैसे ही सिद्धि होगी। इसलिए इन चीजों को समझ करके हमको वैसा ही साधन करना चाहिए और वैसे ही भाव आएंगे और हम लोगों को वैसा ही लोभ उत्पन्न होकर के उस भक्ति में प्रवेश कर। ये लाख जन्म करने पर भी ये भाव तक अपने लाख जन्म तक पढ़ करके कुछ भी नहीं आएगा, ये समझ रखो। ये तो जो गुरु जी की सेवा की है उनके मुख से कुछ सुने हैं, ये सबसे बड़ी आराधना है, इनके द्वारा संभव है। ऐसा करने से ये क्या कृपा सिद्ध है, ये चीज कृपा सिद्धि के द्वारा ये अनुभव कर सकते हैं। साधन के द्वारा ये सब चीजें नहीं होंगी। इस तरह से हजार बार सुनने से भी ये समझ में नहीं, आप किसी को झट हो जाता है। हम ऐसे भावों को प्रणाम करते हैं, ये हम लोगों के हृदय में भी आदिशु वंशा कल्प सरुभ्य कृपा सिंधु पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो।